તારીખ 7/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 432 અને 163 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 499
छोटा सा पत्र में सारभूत बात लिखी है। अम्बालाल का लिखा हुआ पत्र पहुंचा था। आत्मा को विभाव से अवकाशित करने के लिए और स्वभाव में अनवकाश रूप से रहने के लिए कोई भी मुख्य उपाय हो तो आत्माराम ऐसे ज्ञानी पुरुष का निष्काम बुद्धि से भक्ति योग रूप संघ है। आत्मा को विभाव से अवकाशित करने के लिए, अवकाश करना मैंने जगा करना, खाली करना, विभाव से रहित करना, उसको कहते हैं अवकाश करना। आत्मा को विभाव से रहित करने के लिए और स्वभाव में अनवकाश रूप से रहने के लिए और स्वभाव में लगातार रह जाए, अनवकाश बच्चे खाली जगह नहीं होवे, लगातार रूप से आत्मा में रहने के लिए कोई भी कोई मुख्य उपाय हो। इसका मुख्य उपाय क्या है? शास्त्र पढ़ना वो मुख्य उपाय है नहीं कि दयादान पूजा भक्ति उपवास करना वो कोई मुख्य उपाय नहीं है। कोई मुख्य उपाय हो तो आत्माराम ऐसे ज्ञानी पुरुष का निष्काम बुद्धि से भक्ति योग रूप संघ है। जो ज्ञानी पुरुष है उसका संग करे और वो भी बहुमान से करे, भक्ति से करे, भक्ति से करे माने बहुमान से करे तो वो आत्मा स्वरूपस्थ हो सकता है, विभाव को छोड़ सकता है और स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये स्वभाव प्राप्त करने का यही विधि बताया है। हाँ, उसको छोड़ दिया और दूसरे दूसरे उपाय करने लग गए। ज्ञानी पुरुष को आत्माराम होता है। आत्माराम मैंने आत्मा में जिसको आराम है, और जगह आराम नहीं है। दिन रात्र रहे तद ध्यान में ही आया कि नहीं आया है। और जो अनंत सुख धाम है वहाँ आराम नहीं मिलेगा तो और कहीं कौन सी जगह मिलेगा? और ऐसे सुख धाम को छोड़ करके और कहाँ आराम मिलेगा? और जगह आराम की कल्पना करना ये आकुलता में आराम की कल्पना है और इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का निष्काम बुद्धि से मैंने कोई अपेक्षा नहीं रख करके, संसार की कामनाओं की कोई अपेक्षा नहीं कर रख करके बहुमान पूर्वक उसका संग करना, ये निर्मलता का कारण है। और इस आगे जा कर के फिर स्वभाव में अवस्थान होता है। उसकी सफलता के लिए, किसकी सफलता के लिए? ज्ञानी पुरुष का भक्ति योग रूप संग मिले, निष्काम भक्ति मिले, इसकी सफलता के लिए निवृत्ति क्षेत्र में वैसा योग प्राप्त होना, ज्ञानी पुरुष का भी निवृत्ति क्षेत्र में योग प्राप्त होना, यह किसी महान पुण्य का योग है। ये इसलिए लिखा है कि खुद प्रवृत्ति में थे तो वहाँ अगर कोई संग करने को, सत्संग करने को आते भी थे, लेकिन वहाँ प्रवृत्ति के एक तो अंतराय, प्रवृत्ति के कारण भी अंतराय पड़ता है, दूसरा प्रवृत्ति में ज्ञानी पुरुष को देख करके अगर वैचारिक भूमिका परिपक्व नहीं होती है तो संदेह का कारण भी होता है, शंका का भी कारण होता है कि ऐसे ऐसी प्रवृत्ति ज्ञानी क्यों करते हैं, ज्ञानी को क्यों ऐसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सब त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानी हो तो त्याग कर देना चाहिए, तो ऐसा प्राय मानते हैं बाह्य दृष्टि से जीव, तो प्रवृत्ति में शंका का कारण बनता है। इसलिए निवृत्ति क्षेत्र में वैसा ज्ञानी का सत्संग मिले, ऐसा योग प्राप्त होना, यह किसी महान पुण्य का योग है। ये बहुत पुण्य का योग समझ लेना, महान पुण्य का योग समझ लेना है, क्योंकि एक तो उनको निवृत्ति है नहीं, कभी निवृत्ति मिले तो ऐसा योग मिलना भी दुर्लभ होता है, तो ऐसा योग प्राप्त करने के लिए आतुरता होनी चाहिए। और वैसा पुण्य योग प्राय इस जगत में अनेक प्रकार के अंतराय वाला दिखाई देता है, जब हमको फुर्सत हो तो ज्ञानी को निवृत्ति नहीं होती, ज्ञानी को निवृत्ति होती तो हमको कुछ न कुछ बाधा आ पड़े, ऐसा प्राय बनता है, इसलिए उसमें भी अंतराय रहता है। इसलिए हम समीप है ऐसा बारंबार याद करके, जिसमें इस संसार की उदासीनता कही है उसे अभी पढ़ें और विचारें। जब हमारा प्रत्यक्ष योग नहीं है तो हम समीप में हैं ऐसा रख करके, समीप में है मैंने कहाँ समीप में है, हमारे हृदय में विराजमान है, ऐसा समीप में रख करके ऐसे ग्रंथ का पढ़ना कि जिसमें संसार की उदासीनता कही हो, वैराग्य के ग्रंथ पढ़ना, संसार में रस कम हो जाए ऐसे ग्रंथ को, ऐसे वचनों को पढ़ना, पढ़ें और विचारें और उसका विचार करना विशेष रूप से। आत्मा रूप से केवल आत्मा रहे ऐसा जो चिंतन रखना वह लक्ष्य है। आत्मा रूप से केवल आत्मा रहे, आत्मा आत्मभाव में रहे, कहाँ रहे, आत्मा आत्मभाव में रहे ऐसा जो चिंतन है, चिंतन रखना वह लक्ष्य है, वो लक्ष्य में रखकर के चिंतन रखना, और वह लक्ष्य है वो शास्त्र के परमार्थ रूप है, ऐसा जो लक्ष्य है वो शास्त्र के परमार्थ रूप है। टोन थोड़ो बदलाये लो देखो, आत्मा केवल आत्मा पड़े रहे वर्ते, उसमें रहे ऐसा लिया है, आत्मा केवल आत्मा पड़े वर्ते एम जे चिंतन राखू ते लक्ष्य छे, शास्त्रना परमार्थ रूप छे, ये मुझे लक्ष्य छे, शास्त्रना शास्त्र के सार रूप है। आत्मा केवल आत्मा रूप से ही वर्तन करे ऐसा जो चिंतन रखना वही लक्ष्य है, और यही शास्त्र का परमार्थ है, यानी शास्त्र का सार वही है। लक्ष्य में ऐसा रखना है, वही वह लक्ष्य है, ऐसा चिंतन रखना मतलब लक्ष्य में ये बात रख करके चिंतन रखना कि आत्मा आत्मभाव में ही वर्ते, अनात्मभाव में नहीं वर्ते, तो वो लक्ष्य में रहने से चिंतन से आगे बढ़ेगा, वो लक्ष्य में रहने से चिंतन में चिंतन से आगे बढ़ना होगा। इस आत्मा को पूर्व काल में अनंत क्या काल व्यतीत करने पर भी नहीं जाना, क्या परिस्थिति रही है कि अनंत काल व्यतीत हो गया लेकिन आत्मा ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, मूल में हम कौन हैं, कैसे हैं, वो नहीं जाना। जो भी कर्मजनित अवस्था प्राप्त हुई ऐसा अपने को मान लिया, मनुष्य हुआ तो मनुष्य माना और पशु पक्षी हुआ तो वैसा माना, देव हुआ तो वैसा माना। तो इस आत्मा को पूर्व काल में नहीं जाना, पूर्व अनंत काल व्यतीत हुआ है ऐसे पूर्व काल में हमने हमारे स्वरूप को नहीं जाना है। इससे ऐसा लगता है, अनंत काल चला गया इससे ऐसा लगता है कि उसे जानने का कार्य सबसे विकट है, बाकी सब हो चुका। उत्कृष्ट मां उत्कृष्ट पुण्य बंधन करके नवमी ग्रेवक गया, ग्रेवक के विमान होते हैं ना, सोल स्वर्ग के ऊपर गया, सोलह स्वर्ग के ऊपर, और उत्कृष्ट पाप करके सातवीं नरक में भी गया, और मिथ्यात्व का तीव्र सेवन करके निगोद में भी गया। तो पिछली सब भूमिका आ गई है, पिछले सब प्रकार के भव भवांतर हो गए हैं, पंच परावर्तन में सब भव भवांतर हो गए हैं। तो कोई कार्य विकट नहीं है, मतलब कोई कार्य विकट नहीं है। एक आत्मा को अनंत काल में नहीं जाना इसलिए वही कार्य विकट है ऐसा लगता है। यह कार्य सबसे विकट है, अथवा तो उसे जानने के तथा रूप योग परम दुर्लभ है। वो स्वयं से तो जाना नहीं जाता, लेकिन जिस ज्ञानी पुरुष के योग से जाना जाता है ऐसा योग भी परम दुर्लभ है। ये योग परम दुर्लभ है, ऐसा योग आसानी से मिलता नहीं। विशिष्ट प्रकार के पुण्य योग से, विशिष्ट प्रकार के पुण्य योग से, ये अलौकिक पुण्य है, लौकिक पुण्य नहीं है, ऐसा योग बनता है तो आत्मा को जानने का, जानने की दिशा में कुछ प्रयास भी चलता है, कुछ प्रयोग भी हो सकता है, पर उसी दिशा में जीव जितनी योग्यता है उतना आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार आत्मकल्याण की भावना हो, जिसको आत्मकल्याण की भावना होती है और उस भावना के वशात उनको ऐसा विकल्प रहता है कि अगर मुझे संसार के दुख से छूटना हो तो उसको जो छूटे हैं वो जानते हैं कि इसका उपाय क्या है, उसका मुझे योग जरूरी लगता है, उनको आवश्यक जब लगता है तब ऐसा कर्मबंध होता है कि जिसके फल में ऐसा योग मिलता है। ज्ञानी के परम सत्संग की भावना से ऐसा संयोग बनने का एक कुदरती प्रकार उपस्थित होता है। अथवा तो उस जानने के तथा रूप योग परम दुर्लभ है, जीव अनंत काल से ऐसा समझा करता है कि मैं अमुक को जानता हूँ अमुक को नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जीव को ऐसा, हर एक को अपनी बुद्धि का अहम होता है कि मैं अमुक विषय को बहुत जानता हूँ बाकी के भले नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई न कोई अपनी ज्ञान की कल्पना करता है। और ऐसा होने पर भी जिस रूप से स्वयं है, अपना मूल रूप है स्वयं, उस रूप का निरंतर विस्मरण चला आता है। कुछ भी जाना होगा, शास्त्र भी पढ़ा होगा और दुनियादारी का भी अनेक प्रकार का जानकारी किया होगा, लेकिन जिस रूप से स्वयं है, अपना जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप का निरंतर विस्मरण चला आता है, अपने को कभी जाना नहीं है। यह बात बहुत बहुत प्रकार से विचारणीय है, क्यों अपना स्वरूप को नहीं जाना, ये बात बहुत प्रकार से विचारणीय है। क्यों कि धर्म के क्षेत्र में तो गया है, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग विराग भाग लियो, ये सब तो किया है, लेकिन बहुत प्रकार से विचारणीय है कि आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, ये विचारणीय है। और उसका उपाय भी बहुत प्रकार से विचार करने योग्य है, आत्मा को जाने इसका उपाय भी बहुत प्रकार से विचारणीय है, विचार करने योग्य है। जो उपाय शुरू में ही कह दिया उन्होंने, पहले ही कह दिया वो बात, तो कि अगर आत्मा को जानना है, अनवकाश रूप से आत्मा में रहना है, तो आत्माराम ऐसे ज्ञानी पुरुष का भक्ति योग रूप संग करना यही उपाय है। वो उपाय पहले कह दिया, बाद में उस बात को इस तरह से रखा है कि जिज्ञासा और हो जाए कि कौन सा उपाय होगा, लेकिन उपाय तो बताया है, शुरू में ही बताया है। इस तरह से प्राय बहुत से पत्र में ज्ञानी पुरुष का संग की बात, सत्संग की बात बहुत प्रकार से आई है, और वही आत्मकल्याण का सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। अब पत्र 83 है, हाँ वो क्रम के विषय का पत्र है। भक्ति योग रूप संग, अकेली भक्ति ऐसा नहीं लिया, भक्ति योग रूप संग किया, बहुमान से सत्संग करे तो निर्मलता आती है। ये बहुमान के परिणाम से क्या होता है, निर्मलता आती है, निर्मलता आती है तो आत्मज्ञान होने का अवकाश होता है। निर्मलता नहीं आई तो शास्त्र पढ़ करके भी शास्त्रीय अभिनिवेश हो जाएगा, और क्रिया करके असद अभिमान हो जाएगा, और अकेली भक्ति करेगा रोग संज्ञा से तो उसका अहम चढ़ जाएगा। हाँ, दूसरे उपाय में शक्ति का और समय का खर्चा करना नहीं। इसी उपाय में समय और शक्ति का खर्चा हुआ तो मोक्ष मार्ग पाने की परिस्थिति आ जाएगी, वरना दूसरे उपाय करते करते तो अनंत काल गया, दूसरा उपाय करते करते तो अनंत काल गया है। एक पत्र 163 लेने का विचार था, 163 ले ले, 163, हाँ फिर 83 बाद में लेंगे। हिंदी में 245 शायद सौभाग्य भाई के ऊपर का पत्र होगा, नहीं दिया है, ऐसे ही लिखा, क्यों हरि शब्द का प्रयोग किया है ना इसलिए। हे हरि, इस कलिकाल में तेरे प्रति अखंड प्रेम का एक क्षण भी बीतना दुर्लभ है, ऐसी निवृत्ति लोग भूल गए हैं। परमात्मा के प्रति अखंड प्रेम का एक क्षण भी बीते बहुत दुर्लभ है, ऐसा परिणमन को विस्मरण हो, ऐसा परिणमन का विस्मरण हो गया है। ऐसी निवृत्ति लोग भूल गए हैं। प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर निवृत्ति का भान भी नहीं रहा। इतनी संसार की प्रवृत्ति है कि जिसमें आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति लेने का भान नहीं रहता। बस दौड़ लगाते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। नाना प्रकार के सुखाभास के लिए प्रयत्न हो रहा है। जो संसार में लोग प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवृत्ति इसलिए करते हैं कि सुख मिलेगा। प्रवृत्ति करने से सभी प्राणियों की प्रवृत्ति संसार में सुख प्राप्त करने के लिए है। एक चींटी भी डर से बाहर निकलती है तो वो सुख के लिए निकलती है, और हम इधर बैठे हैं और पांव इधर से उधर करेंगे तो भी सुख के लिए करेंगे। हाँ, कुछ भी छोटी से छोटी और मोटी सी मोटी प्रवृत्ति किसके लिए है? कि सुख के लिए है। लेकिन ज्ञानियों की नजर में वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जो सुख नहीं है लेकिन सुख का आभास जिसमें होता है, कल्पना, आभास माने कल्पना होती है, उसको सुखाभास कहते हैं। ये सुखाभास के लिए लोग की प्रवृत्ति संसार में लगातार चालू रहती है। चाव भी नष्ट प्राय हो गया है। चाव मैंने आरत, आरत और हिंदी में इसका क्या है, चाव। चाव मैंने चाहा, चाहत, चाहत होती है, चाहत होती है। चाहत भी नष्ट प्राय हो गया है, मैंने नष्ट जैसा हो गया है, नाश हो गया है। गरज, गरज, आत्मकल्याण की गरज नहीं रही। किसी को आत्मकल्याण की गरज नहीं रही। जितनी गरज उतनी पात्रता, समझना है। पात्रता का नाप किसे कैसे आता है? गरज से आता है। ये गुजराती शब्द अनजाना है, आरत शब्द लिखा है। आरत शब्द का बोलने में प्रयोग नहीं है। गरज, गरज अर्थ किया है ना, वो बराबर अर्थ किया है। गरज, जितनी ज्यादा गरज उतनी पात्रता भी ज्यादा, समझना। और गरज नहीं है तो पात्रता भी नहीं है। ये मीटर है, पात्र का नापने का ये मीटर है। पात्रता यहां से नापी जाती है। हैं? धर्म नहीं गरज। अच्छा, नहीं, ठीक बात है, ठीक बात। गरज मेरे धर्म की गरज को या आत्मकल्याण की गरज को, एक ही बात है। चाव भी नष्ट प्राय हो गया है। वृद्ध मर्यादा नहीं रही। वृद्ध मर्यादा मैंने क्या, कुछ उम्र से तो प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। शुरू से प्रवृत्ति निवृत्ति की बात चली है ना, तो कुछ उम्र से तो प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। संसार की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्यों? कि ऊपर में आयु तो बहुत सीमित है। अगर जिसने 40-45 साल का आयु भोग लिया, उसने आधा से ज्यादा आयु भोग लिया, तो आधा से ज्यादा आयु तो संसार की प्रवृत्ति में गया। अब जो बाकी रहा वो आत्मकल्याण के लिए, ऐसे तो आत्मकल्याण के लिए तो ज्यादा से ज्यादा समय होना चाहिए। लेकिन जिसने आधा खर्च कर दिया, गंवा दिया, उसके लिए तो बचा नहीं है, तो उसको तो मर्यादा कर लेनी चाहिए। वृद्ध मैंने आयुष की मर्यादा कर लेनी चाहिए। धर्म मर्यादा का तिरस्कार हुआ करता है। कहीं भी जाओ, धर्म मर्यादा का तिरस्कार होता है। कोई भी संसार से छुटना चाहता है तो उनको, इनका विरोध होता है। पहले तो घर में ही विरोध हो जाता है, क्योंकि दूसरे की जो भावना है, राग है, उसका पोषण, राग के पोषण बंद हो जाता है। आपस में जो राग होता है वो राग कम हो जाता है, तो लगता है अरे मेरे प्रति अभी जो राग था पहले अभी नहीं हुआ है, तो उनको द्वेष आने लगता है, यहाँ से गड़बड़ होती है। तिरस्कार, वो धर्म मर्यादा का तिरस्कार है। पहले काल में ऐसा नहीं था, इस काल में ऐसा ज्यादा है, विषम काल है ना, इसलिए फिर लोगों को समझ तो नहीं है कि धर्म का मूल्य कितना है, धर्म का फल क्या और इसका मूल्य क्या है, वो पता नहीं है। तो कोई धर्म करने को तैयार होता है और प्रवृत्ति को छोड़ता है तो परिवार वाले को पोसाता नहीं है, ऐसा नहीं। अपना ड्यूटी पहले करो, धर्म करना हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पहले फर्ज निभाओ, हमारे प्रति की फर्ज पहले निभाओ, फिर बाद में करना हो तो करना जितना अवकाश रहे, पर उतनी मर्यादा में करना वही ठीक है। ये अपना आपस का फर्ज छोड़ दें और धर्म करें, वो कहाँ का धर्म है, वो धर्म है ही नहीं, ऐसा बोलेगा, ऐसा धर्म कैसे हो सकता है। तो क्यों कि ऐसा करने से हमको दुख होता है, तो हमको दुख लगा करके तुमको धर्म करना है, हमको दुखी करके धर्म करोगे, कहां से धर्म होगा, ऐसा कहेंगे। कई प्रकार की बातें आती है, लोग समझते नहीं धर्म क्या चीज है, धर्म मर्यादा को समझते नहीं है, तो उसके प्रति तिरस्कार होता है, धर्म करने वाले के प्रति प्राय तिरस्कार होता है, है? धर्म मर्यादा का तिरस्कार हुआ करता है। एक तो वो बात परिवार की रही, दूसरी बात रही समाज की। समाज में रूढ़ी धर्म चलता है, सही धर्म का पता किसी को नहीं है। अगर कोई सही धर्म का मार्ग में आएगा और वो मार्ग बताएगा या कहेगा तो इसका विरोध हो जाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उसका विरोध होने लगता है। जैसे गुरुदेव का विरोध हुआ, कृपालुदेव का भी विरोध हुआ, वो तिरस्कार, धर्म मर्यादा का तिरस्कार है। वो लौकिक में भी धर्म सहिष्णुता की स्थापना चली है, तो हिंदुस्तान है तो सिर्फ हिंदू का मंदिर इधर नहीं है, यहाँ तो मुसलमान की मस्जिद भी है और सिखों के गुरुद्वारा भी है और क्रिश्चियनों के चर्च भी है। तो कोई कुछ भी करता है तो क्या कहते हैं कि भाई सहिष्णुता रखो, जिसको अपना अपना कार्य करना हो करने दो अपनी मान्यता अनुकूल। लेकिन समाज में ये संप्रदाय बुद्धि में ये चलता नहीं है, वहां सहिष्णुता भी खत्म हो जाती है, तो एक मर्यादा छोड़ दिया। फिर जिसको जैसा अपनी श्रद्धा में ठीक लगे वैसा करे, दूसरे की श्रद्धा का विरोध करना ये धर्म मर्यादा नहीं है, चाहे श्रद्धा सही हो गलत हो अलग बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन लोग लौकिक रूप से भी सहिष्णुता रखते हैं तो हम तत्व समझने वाले की क्या हालत है, हम बर्दाश्त करते नहीं है, विरोध कर लेते हैं, बहुत बहुत खराब कराता है, ये धर्म का तिरस्कार होता है, ऐसा कहते हैं। सत्संग क्या और यही एक कर्तव्य रूप है, ऐसा समझना केवल दुष्कर हो पड़ा है। बात ले गए सत्संग पर, सत्संग क्या कोई समझते नहीं। ऐसा समझना केवल दुष्कर हो पड़ा है। सब अपने अपने क्रिया में लगे हैं, परंपरागत संप्रदाय में जो परंपरागत क्रिया है, और आजकल जो है वो भक्ति और क्रिया दो बात चली है। गुरुदेव ने थोड़ा ज्ञान मार्ग को बाहर लाए, बाकी तो संप्रदाय में पूजा करो और उपवास आदि क्रिया करो, बस पूजा की क्रिया और उपवास की क्रिया, बस आ गया धर्म। तो कहते हैं कि सत्संग एक ही कर्तव्य है, ऐसा समझना भी केवल दुष्कर हो गया है, वो समझ भी दुष्कर हो गई है। दूसरी जगह कहा, गुरुदेव ने उतना सत्संग के लिए गांव गांव में मंडल, गांव गांव में मंदिर और वहां शास्त्र का स्वाध्याय चले, ये प्रणाली का चालू किया था। हाँ, आज पूजा भक्ति का अपने यहाँ भी जोर हो गया। इकट्ठे होकर के अपने आत्मकल्याण कैसे हो इसका विचार विमर्श करना चाहिए, मेरा आत्मकल्याण कैसे हो इसका विचार विमर्श दूसरों के साथ कर लेना चाहिए। मेरी यही स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जना बोले और दूसरे सुनते रहे, ऐसा नहीं होना। सब अपने अपने विचार, सब अपनी अपनी बात कहे और उसके पर विचार चले, और मुमुक्षु की भूमिका के जो ज्ञानी पुरुष के वचन हो उसके पर विचार चले, वही आज्ञा है उसके पर भी विचार चले। सत्संग की प्राप्ति में भी जीव को उसकी पहचान होनी महाविकट हो पड़ी है। देखो, सत्संग की प्राप्ति में भी ये यथार्थ सत्संग है या ये परम सत्संग है इसकी पहचान होनी महाविकट पड़ी है। ये सबसे विकट हो गई, क्योंकि उसमें तो ये
प्राप्त करे वैसे वचन बहुत बार जाने का भी कुछ बल नहीं होता। जीवों की योग्यता ऐसी हो गई है कि एक बार वो वचन सुनने में आए तो जीव का कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, तन से मुक्त हो जाए। ऐसे वचन बार बार कहने पर भी कोई फल नहीं दिखने जाता है, क्या हो गया? तो अयोग्यता, इतनी अयोग्यता स्थिर होती है। परिणति ऐसी बिगड़ गई है, यानी दर्शन वो इतना तगड़ा हो गया है, यानी कि पुरुष के वचन से मुक्त कराने वाले यानी पुरुष के वचन की कोई आत्मा पर असर नहीं है। असर आनी चाहिए वचनों की, असर आनी चाहिए। क्या होता है, वचन समझ लेते हैं लेकिन वचन के असर आने चाहिए। समझ का फल यही होना चाहिए कि समझे तो उसकी असर आए, समझे वाला समझ नहीं आए वो समझ नहीं है, ना समझ है, ऐसा लेना। एक बार जिन वचनों की प्राप्ति होने से, जिन वचनों की मतलब जिस प्रकार के वचन के ऐसे होते हैं उनकी प्राप्ति होने से जीव बंधन मुक्त हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसे प्रभावशाली वचन होते हैं। ऐसे और तेरे स्वरूप को प्राप्त कर ले, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर ले, हरी मैंने आत्मा लेना, हे हरी इस प्राणकली काल में तेरे प्रति अखंड प्रेमता एक क्षण भी इतना दुर्लभ है, हरी मैंने आत्मा लेना। उगम पापम हर पीली थी हरी, हरि का अर्थ ऐसा है जो भोग को, पाप को हरता है, दूषण को हरता है, परमात्मा को निर्मलता को प्राप्त कराता है, उसको नाम हरि कहने में आया है, वो आत्मा है। इधर भगवान को भी हरि कहते हैं और आत्मा को भी हरि कहते हैं, और ज्ञानी पुरुष को भी हरि कहने में जहां तू भी कतन चलता हो साथ कतन करता। तेरे स्वरूप को प्राप्त करे, मेरे आत्मस्वरूप को प्राप्त करे, वैसे वचन बहुत बार कहने के प्रति कुछ फल नहीं होता। ऐसे आत्मा का परिणाम आत्मा की जो स्थिति है ऐसी गड़बड़ वाली हो गई, इसको कोई ऐसा भी पहुंचता नहीं है। जैसे रजाएं उड़ने से कोई लकड़ी मारे तो भी लगती नहीं, ऐसे श्री गुरु का उपदेश का असर नहीं होता है। दर्शन होकर रजाएं उड़ी है, पतला चदर हो, रोटी जैसा पतला चदर हो, लकड़ी मारे तो बराबर लगेंगे। तो उपदेश की असर क्यों नहीं होती है, वचनों की असर क्यों नहीं होती है? ऐसा दर्शन वो पतला हो जाए तो असर आएंगे, लेकिन दर्शन वो मोटा होगा तगड़ा होगा तो असर आएगी
नहीं।
एकदम दर्शन में पतला हो गया था, सीधी असर हो गई। संत ऐसे होते हैं कि जीव बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन हमारी योग्यता नहीं है तो गड़बड़ ऐसी अयोग्यता जीवों में आ गई है। वर्तमान काल में जीवों में ऐसी अयोग्यता आ गई है कि परमार्थ के आत्मकल्याण के कारणभूत वचन मिलने पर भी इसकी कोई असर पहुंचती नहीं है। ऐसी अयोग्यता जीवों में आ गई है, निष्कपटता आने को प्राप्त हुई है, निष्कपटपना नहीं रहा, मायाचार ज्यादा बढ़ गया है इसका। निष्कपटता धर्म के क्षेत्र में भी जो अपना दिखाव करते हैं, क्या आडंबर करते हैं, वहां निष्कपटता नहीं है, वहां कपटपना है, तो वो हानि को प्राप्त हो गई है। वहां भी दिखा देखी दिखा देखी से लोग करने लग जाते हैं। शास्त्र में संदेह उत्पन्न करना, इसे जीव ने एक ज्ञान मान लिया है, बुद्धिवाद का जमाना आया, तो शास्त्र में शंका करेगा, और शास्त्र में ऐसे शंका उठाने वाले को बुद्धिमान माना जाएगा। इसको ज्ञान ज्यादा है, इसको कैसे शंका करता है, कैसा तर्क लड़ाता है, कैसा बुद्धि लड़ाता है, तो भूल जाता है कि शास्त्र को अनुभवी पुरुषों ने लिखा है। किसने लिखा है?
अनुभवी
पुरुषों ने लिखा है। कौन दिन अनुभवी है वो उसको निर्भर करता है, ऐसा नहीं है वैसा है। अनुभवी कहते हैं कि आत्मा परिणाम है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, ऐसा चलता है। और उसको मानते हैं हमारे में ज्ञान बढ़ गया है, वही ज्ञान है, इसको ज्ञान क्या जमाना है, ऐसा बोलते हैं। शास्त्र में शंका करना, गुरु वचनों में शंका करना, वो ज्ञानी माना जाएगा, तो बहुत ज्ञान है। देखो इसमें भी सुधार करता है, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक मात्रा का भी सुधार करना चाहिए, उसने आज्ञाकारिता होनी
चाहिए।
शास्त्र में फैसला किया, शास्त्र ने मना किया, शास्त्र में भले किया, वो देश का अनुसार करो, व्यापार किया क्या नहीं किया, ऐसे करते हैं। शास्त्र में संदेह उत्पन्न करना, उसे जीव ने एक ज्ञान मान लिया, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, उसको ज्ञान कहेंगे लोग, ऐसी बात आएगी। બહુ બુદ્ધિમાન હોય, બિલકુલ સાચો છે. બીજા ના વાત થાય પરિક્રમ કે પ્રાપ્તિ કે લીધે ભક્ત કો ભી છવિ પ્રાપ્ત હૈ ઉસે પાપ રૂપ નહીં લગતા. અપના બાહ્ય સ્વાર્થ સાંસારિક સ્વાર્થ કે લીધે કિસી કો ભી ઠગ લેતા હૈ. આમ તો લૌકિક વાયમ કહેવાય છે, એક ઘર તો ડાકણ પણ છોડે, લૌકિક કહેવાય છે. ડાકણો બધાને ખાઈ જાય, બધાને મારે, પણ કોઈ એક ઘર તો એ પણ છોડે, એકાદ ઘર તો એ પણ છોડે. એમ પરિગ્રહની પ્રાપ્તિ કે લીધે એ ભક્ત કો ભી ઠગને કા, સાધન કો ભી ઠગ લે. और ऐसा कार्य उसे पाप रूप नहीं लगता, घोर पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो उसको पाप गिनते नहीं है. परिग्रह का उपासन करने वाले सदी सदियों से जीव ने जैसा प्रेम किया है वैसा प्रेम तुझसे अथवा तेरे भक्ति से किया होता तो जीव तुझे प्राप्त कर लेता. संसार के पदार्थ પરિગ્રહ કા ઉપાસન કરને વાલે સગે સંબંધીઓ કોઈ મદદ કરેગા તો બહુ પ્રેમ કરેગા, કોઈ મદદ કરેગા તો ઉસકે પ્રતિ બહુ લગાવ રખેગા, બહુ ચિંતક હૈ. તો કહેતે હૈ કે જૈસા પ્રેમ વહાં ક્યા વૈસા પ્રેમ તુજસે યાને આત્મા સે ક્યા હોતા યા તેરે ભક્ત સે ક્યા હોતા તુજે પ્રાપ્ત કર લેતા, તો આત્મા કો પ્રાપ્ત કર લેતા. આત્મા કો પ્રેમ કરો ઓર આત્મા કો પ્રેમ કરને વાલે કો પ્રેમ કરો, તો તમારા આત્મા કી પ્રાપ્તિ હોગી. સર્વ ભૂતો મેં દયા રખની, ભૂતો મેં પ્રાણી, સર્વ પ્રાણીઓ મેં દયા રખની, और सब में तुम्हें ऐसा समझकर दासत्व भाव रखना, ये परम धर्म तो स्खलित हो गया था. और जगह तो नहीं है लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी नहीं है. सर्व प्राणी में दया रखनी और सब में तुम्हें ऐसा समझकर दासत्व रखना, फिर मेरे जैसा ही सब आत्मा है. यानी आत्मा है सो परमात्मा है, जैसा परमात्मा है उसी जाति के समात्मा है, ऐसा जानकर दासत्व रखना. दासत्व रखने का कारण यही है कि जीव को मान तो बात बात में चढ़ जाता है, उसको मारने के लिए दासत्व जैसा कोई शस्त्र है नहीं. बहुत अनुभवपूर्ण बात किया है, हर बात में किसी भी बात का मान चढ़ना ये तो बात बात में हो जाता है. बात बात में दूसरों को उपदेश देने लगेगा, बात बात में दूसरों को सलाह कर देने लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. दासत्व तो खत्म हो जाता है. दाम दाम ये प्रभु, वो तो सदगुरु के प्रति लिखा है, यहाँ तो दूसरे प्राणियों के प्रति की बात चल रही है. जिसको ज्ञानी बुद्धि में परमेश्वर बुद्धि होती है उसको क्या लिया, सर्व प्राणी के प्रति दासत्व आ जाता है. ऐसे ही सब में परमात्मा विराजमान है. किसका अपराध मैं करूं, किसके प्रति द्वेष करूं,
ज्ञानी हो गया परमात्मा,
ये ऐसा एक भाव फिर आ जाएगा किसी को दुख पहुंचाने का. मेरे से मन से वचन से काया से कृत करे अनुमोदना से होना चाहिए. एक निर्दोष होने के विचारधारा में नियम की एक ऐसी बात हो
जाती
है, क्या करें, अच्छी बात करके बताओ. जब अपने को निर्दोष होना है, परिपूर्ण निर्दोष होना है, तो दूसरों के प्रति कुछ गड़बड़ हो रहे ऐसा दोष क्यों करना? एक परिणाम ऐसा आ जाता है जब अभिप्राय बदलता है, तब इस प्रकार का अभिप्राय जब होता है तब एक ऐसा परिणाम आ जाता है कि मेरे मन से, वचन से, काया से, कृतकालित मनोभला से, किसी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी प्राणी को मेरी ओर से तकलीफ होना चाहिए नहीं, या दुख पहुंचना नहीं चाहिए, तो सर्व प्राणी के प्रति दासत्व आ गया। तो ज्ञानी पुरुष की पहचान के साथ इस प्रकार के परिणाम का अभिनाभावी बना होता है। एक उपलक्षण दिया कि ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि आ गई, तो साथ साथ क्या हुआ कि सर्व प्राणी के प्रति दासत्व आ गया, किसी के प्रति अपराध करने का अभिप्राय करने का फिर हो जाएगा तो उसका निषेध आ जाएगा। क्या है कि जो व्यवहार में जो कठोरता होती है वो तो चली जाती है, ये कठोरता एकदम चली जाती है, और परिणाम कोमल होने से ये जो आत्मा का बोध है वो बोध के असर होने का अवकाश रहता है या परिस्थिति पैदा होती है।
कोई संबंधी हो या कुटुंबी जन हो और इसकी कुछ आशा अपेक्षा हो कि जो अपने निजी हित के विरुद्ध जा रही है, अपने निजी हित के विरुद्ध जा रही है, तो उस प्रसंग में दासत्व का करके कैसे दोनों चीजें कर सकते
हैं? उसमें ऐसा है कि पहले तो हम उसको समझाने का प्रयास करें, देखिए ये बहुत बहुमूल्य कार्य, इसका मूल्य बहुत है, ये जो मार्ग है इसका मूल्य तो इतना है कि जीव निर्वाण पद को प्राप्त होता है, ये जगत का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, तो उस विषय मूल्यांकन क्या है उसको समझाने का प्रयास करें। अगर समझदार कोई होगा तो वो विरोध में नहीं रहेगा, तो ना समझ हो तो विरोध में रहेगा, तो उसका विरोध को हमें पोषण देना नहीं है, क्योंकि उसमें तो उसको भी नुकसान है, उसमें तो उसको भी नुकसान है, तो उसका उसका नुकसान हो वो भी हम नहीं चाहते और उसको दुख हो भी नहीं चाहते, तो बात तो थोड़ी डेलिकेट हो जाती है। फिर भी दोनों में पसंद करने लोग की क्या बात है, थोड़ा दुख हो तो भले हो लेकिन उसको ज्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए। फिर उसको समझे समझे तो भी अपना आत्म कल्याण को छोड़े नहीं, अपने आत्मकल्याण से अगर इसका हित होगा तो होगा, अपना आत्मकल्याण छोड़ देने से इसका वो हित होगा वो तो बनने वाली चीज है ही नहीं, अगर प्रभाव पड़ेगा तो हमारी निर्दोषता का प्रभाव पड़ेगा, वो भी इस पर होना रुचि होगी तो वो भी इस मार्ग में आ जाएगा। सर्व रूपों में तेरा अस्तित्व समान ही है, इसलिए भेदभाव का त्याग करना है, सर्वात्मा समदृष्टि में हो, समान रूप है इसलिए कहीं भेदभाव नहीं रखना, केवल महापुरुषों का अंतरंग ज्ञान, ऐसा महापुरुषों का अंतरंग ज्ञान है वो आज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, संभव वाली बात चली गई है, वो कहीं दिखने में नहीं आती है। हम भी जो तेरा मात्र निरंतर दासत्व ही अन्य प्रेम से चाहते हैं, उसे भी तो कलयुग का प्रसंग इसे निर्या करता है, हरि मैंने ही कुदरत, हम तो मात्र तेरे दासत्व भाव करके प्रेम चाहते हैं, पर तो उनको संसार के प्रसंग क्यों देता है, संसार के प्रसंग से हटा दे हमको, हमको संसार में रहने की रुचि। अब ये हरी यह देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, हमारी प्रति यदि ऐसी इच्छा हो तो प्रेरणा कर कि जिसमें हम उसे सुखरूपी भी मांग लेंगे। तो આ જોડેલું જતું નથી, સાંભળ્યું જતું નથી, કરાવવું યોગ્ય છે કે ન કરાવવું યોગ્ય છે, તેમ છતાં અમારા પ્રત્યે તારી તેવી ઈચ્છા હોય તો પ્રેરણા કર, એટલે અમે તે કેવળ સુખરૂપ જ માની લઈશું। ફિર ભી હમરે પ્રતિ તુમ્હારી એસી ઈચ્છા હો તો પ્રેરણા કર, ફિર ભી હે પરમાત્મા તુમ હમકો પ્રેરણા કર, જો ભી પરિસ્થિતિ હૈ उसके प्रति हम समाधान रखें, सुखरूप मान ले रहे। और हमारे प्रसंग में आने वाले जीव एक प्रकार से हमारे प्रसंग में आए हुए किसी प्रकार से दुखी न हो और हमारे निश्चित न हो या हमारे कारण से ऐसा हमारे कारण से दुखी न हो, द्वेषी न हो, ऐसा मैं शरणागत पर शरणागत पर अनुग्रह होने योग्य हो, ऐसे मुझ शरणागत पर अनुग्रह होना योग्य हो तो कर, मेरे पर ऐसी कृपा करके कोई इस मार्ग का द्वेषी न हो, मेरे प्रति द्वेषी न हो। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, फिर भी किसी को द्वेष हो सकता है, अच्छा नहीं लगता है हो सकता है, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, ऐसी कोई प्रेरणा कर। मुझे बड़े से बड़ा दुख मात्र इतना ही है कि जीव तेरे से विमुख करने वाले प्रवृत्तियों से प्रवृत्ति करते हैं, सन्मार्ग से विरुद्ध, दिन गुरु शास्त्र से विरुद्ध, तेरे से विमुख होने ऐसी प्रवृत्ति प्रवृत्तियों में जीव की प्रवृत्ति होती है, ये हमको सबसे बड़ा दुख है। ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान में आ जाएंगे। उनका प्रसंग होना और फिर इन्हीं कारणों से उन्हें तेरे सन्मुख होने का कहने पर भी उसका अंगीकार न होना, यह हमें परम दुख है। ऐसी वृत्ति नहीं हो और इस कारण से मैंने करुणा से तेरे सन्मुख होने का हम उसको बताते हैं, दिखाते हैं, फिर भी वो उसको मानते नहीं है, अंगीकार नहीं करते हैं, तो हमको बहुत दुख होता है। इसकी भलाई के लिए कहता है, फिर भी वो मानता यदि योग्य होगा तो उसे दूर करने के लिए हिनाश तो समर्थ है, समर्थ है, मैं अपना लंबा नहीं कहते हैं। अगर ऐसी प्रकट परिस्थिति को टालने के लिए कोई समर्थ है तो तू ही समर्थ है, मेरे क्या समर्थ है उसमें। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मेरा समाधान बारम्बार मेरा समाधान कर, हे हरि मेरा समाधान कर, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। ऐसी कोई नाजुक परिस्थिति में जीव को असमाधान नहीं है, ऐसी परिस्थिति ऐसा कुछ कर दो, अनुग्रह करके कृपा करके ऐसा कर दो, वो बात ले लिया है, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, यदि तुम्हें ऐसा बनता है तो बहुत संभाल करके चलना। ऐसा लिया है तो सन्मार्ग के प्रति चलने वाले को भी थोड़ी तकलीफ होती है, और देव गुरु शास्त्र का विरोध अपने आत्मा का विरोध है, ऐसा होता है तो दुख होता है, ऐसा नहीं हुआ ऐसे चाहना रखते हुए।
Yeah, I did. You want to go on? Yeah, I want to go on.